देवियों सज्जनों, आप सबको नमस्ते। आज हम सेवेंथ प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज, पिछले बार सिक्स्थ का आपने डिस्कस किया था, ये भी बड़ा सुंदर और बहुत ही पावरफुल मैसेज है। इस नियम में बताया जाता है कि सबसे प्रीतिपूर्वक, मेरे साथ बोलिए, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। सिंपल मीनिंग, आवर कंडक्ट टुवर्ड्स ऑल शुड बी गाइडेड बाय लव, राइटसनेस एंड जस्टिस। कुछ चीजें रेगुलर सुना हुआ लगता है, पर इसकी बारीकी से जो फर्क है वो हमें कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं। जनरली हम खास करके जिस तरह के हमारा सोसाइटी बढ़ता है उसमें एक चीज ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर में आता है, वो है कि मेरा राइट है। और वो राइट के कंसेप्ट में हम इतने ज्यादा घुल मिल गए हैं, तो इवन हमारे जो नेक्स्ट जेनरेशन में भी ये बहुत ज्यादा दिखता है। फिर हमें अपनी जो ड्यूटीज या रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हम धीरे धीरे इग्नोर करते हैं। जैसे नॉर्मली एक घर में मैन एंड वुमेन आर हैव एन आर्ग्यूमेंट, तो पुरुष कहता है कि आई हैव ए राइट टू कम होम टू सम पीस एंड क्वाइट, तो पत्नी भी कहती है कि आई हैव ए राइट टू टेल यू हाउ आई फील। अब धीरे धीरे कन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट और धीरे धीरे खराब की ओर जाता है, जो मोस्टली जो उसकी सार तत्व होता है, आई हैव ए राइट टू बी हियर्ड, आई हैव ए राइट टू बी लव्ड, आई हैव ए राइट टू हैव फीलिंग्स, आई हैव ए राइट टू बी हैप्पी, आई हैव ए राइट टू हैव ए नाइस हाउस, आई हैव ए राइट टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। प्रॉब्लम यह है कि घर में द राइट ऑफ मैन एंड वोमैन कंफ्लिक्ट करते हैं, पर वो एंटेंगल है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दे बोथ फील दैट दे आर बींग मिसट्रीटेड एंड द अदर शुड बी एबल टू सी दैट ट्रूथ। तो मेरा ये राइट है, दूसरे की ये ड्यूटी है। ये नियम कहता है हमारी ड्यूटी है, जब हम दूसरों से व्यवहार करते हैं हमारी ड्यूटीज क्या है, क्या हमें करना चाहिए, वो ध्यान रखें, न कि सामने वाले की क्या ड्यूटी और मेरा क्या राइट है ध्यान रखें। जब केवल राइट पर सब चलते हैं तो फिर कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। पति को भी राइट है खुश होने का, पत्नी को भी राइट है खुश होने का, इन बिटवीन किसकी क्या ड्यूटी है वो मिस हो जाती है, तो राइट के चक्कर में फिर फाइटिंग बढ़ जाती है। इसीलिए ये सूत्र कहता है, ये जो आर्य समाज का सातवां नियम, कि हमारा जो बिहेवियर है दूसरों के साथ, वो मेरे घर में हो, पड़ोसी में हो, कहीं भी हो, जिसको मैं जानता हूं या कोई अनजान व्यक्ति से भी, या स्टोर में मैं किसी अकाउंटेंट से या किसी सेल्समैन से भी बात करूं, तो मेरे व्यवहार में तीन चीजें होनी चाहिए। एंड वो तीन चीजों से मेरी बातें रेगुलेटेड होनी चाहिए। पहला, प्रीतिपूर्वक, बड़े प्यार होना चाहिए, और यथा योग्य जस्टिस अकॉर्डिंग द राइटसनेस, जो जैसा डिजर्व करता है उसके हिसाब से, और धर्म के अनुसार। बात को थोड़ी डिटेल में जाने से पहले, ये खूबसूरत यजुर्वेद का मंत्र है, वो कहता है धृते दृंघमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। ध्यान दीजिएगा इसके हर पॉइंट्स को, तीन पॉइंट है। वो कहता है कि सभी लोग मुझे, सभी प्राणी मुझे मित्र भाव से देखें, मतलब एवरीवन शुड सी लुक एट मी इन ए फ्रेंडली वे। लुक एट मी मतलब मेरे से व्यवहार करे फ्रेंडली। ये तो हो गया राइट की बात, मेरा राइट है कि मुझे फ्रेंडली ट्रीट किया जाए। पर यहां ड्यूटी की भी बात है, मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीखे। मैं भी सभी प्राणियों को उस मित्र भाव से, फ्रेंडली आई से देखूंगा। और कंक्लूजन क्या है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। हम एक दूसरे को फ्रेंड वाले आंखों से देखेंगे, मतलब मित्र भाव से ट्रीट करेंगे, जहां एक दूसरे को ट्रीट करने की राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की संविधान हो। तो बॉटम लाइन है कि हमारा व्यवहार फ्रेंडली होना चाहिए, वो अनजान व्यक्ति हो या जानकार हो, वो मेरे कितना करीब हो या कितना दूर हो, मेरे फैमिली मेंबर हो या कोई अनजान मेंबर हो, ट्रीट करना चाहिए। पहली चीज है प्रीतिपूर्वक। इनमें जो सबसे डोमिनेटिंग नेचर है कि हमारे अंदर सबके प्रति वो प्रेम भाव होना चाहिए, जैसा प्रेम भाव हम अपने बच्चों के प्रति रखते हैं या अपने जिससे भी हम प्यार करते हैं, स्पाउस है, बच्चे हैं, काम है, ऑफिस है, गाड़ी है, हम उनके प्रति रखते हैं, वही प्रेम का भाव हमें दूसरों के साथ रखने की जरूरत है। बहुत लोगों में बाय नेचर है, वो सबको उतने ही प्रेम से बात करते हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों को कल्टीवेट करने की जरूरत होगी या होती है, जो जिनमें इस तरह का स्वभाव नहीं, जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कहीं तो बड़े प्यार से रहते हैं और कहीं खूब लड़ाई करते हैं, काफी डोमिनेटिंग या एग्रेसिव नेचर रखते हैं। जब कहा जाता है किसी से मतलब न केवल इंसान एवं पशु पक्षियों से भी हमारा व्यवहार वो प्रेम पूर्वक होना चाहिए। देवियो सज्जनों, याद रखिए, आप कभी भी सोसाइटी में एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, आप किसी का भी हेल्प नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर किसी के प्रति एम्पैथी नहीं है, वो सिंपैथी नहीं है, वो कंपैशन नहीं है। ये कंपैशन आता है जब आपके अंदर एक दिल हो, दिल का मतलब जहां प्यार हो। वो प्रेम भाव जब आपके अंदर ना हो, इवन आप कितने भी सोशल सर्विस करें, समाज सेवा करें, वो सब यूजलेस होता है। इवन आप दूसरों को हेल्प करते समय इस एटीट्यूड के साथ करते हैं, आप बहुत बड़े हैं, दूसरों को भला करते मतलब दया करते हैं, छोटा है, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए या जिसके लिए आप हेल्प करते हैं काम की चीज नहीं होता है। इसीलिए नंबर टू, जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं, ये मत सोचिए कि हमारी असली हंसी और नकली हंसी को कोई नहीं समझ पाता। मैं जब किसी को हेल्प करता हूं, हेल्प करते समय वो मेरे एटीट्यूड को नहीं समझ सकता, वो अलग बात है कि वो रिएक्ट ना करता होगा, अपनी अलग अलग मजबूरियां होंगी, अलग अलग कंपल्शंस होंगे, सिविलिटी का ध्यान रखता होगा, पर इसका अर्थ नहीं है कि वो हमें नहीं समझ पाता है। जब मैं किसी से कोई व्यवहार करता हूं, डिस्क्रिमिनेटिव व्यवहार करता हूं, तो वो मुझे वो समझ नहीं पाता हो। इवन जब भी आप सोशल गैदरिंग में होते हैं, हमारा व्यवहार कितना भी अनजान हो या क्लोज हो, उन व्यवहारों में हो सकता है आप जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, आप वहां को ज्यादा बात करते होंगे, ज्यादा घुल मिल के बात करते होंगे, कोई अनजान व्यक्ति होगा आप उससे बहुत कम बात करते होंगे, वो मैटर नहीं करता। आप एक लाइन भी किसी से बोलते हैं, उस एक लाइन के पीछे आपकी किस तरह के एटीट्यूड काम करता है वो बहुत मैटर करता है, उसमें वो प्रेम दिखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सबके साथ इतने ही मिनट स्पेंड करें, आप एक सेकंड भी स्पेंड करते हैं, पर वो एक सेकंड जब स्पेंड करते हैं तो उसमें आपकी किस तरह की भाव झलकता है आपकी वाणी में, आपके फेशियल एक्सप्रेशन में, आपकी बॉडी के एटीट्यूड में, वो मैटर करता है। वो झलकता वही है जो आपके दिल में होता है, और दिल में प्रेम होना जरूरी है जब भी हम किसी से ट्रीट करते हैं। और अगर ऐसा कोई जनरल एटीट्यूड हमारे अंदर नहीं है किसी भी प्राणी के प्रति, या बड़ा डिस्क्रिमिनेटिव एटीट्यूड है, मैं कुछ लोगों के साथ तो बहुत ही प्रेम भाव से बात करता हूं, बाकी सबको थोड़ा एटीट्यूड दिखाता हूं, तो वो इस तरह के लोग सोशियली किसी के भी नहीं हो सकते, और वो खुद के भी अंदर से बड़े कंफ्लिक्ट किस्म के माइंड वाले लोग होते हैं, जिनके अपने माइंड में भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन रहता है। सूत्र कहता है सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। ये वाली बात जो अभी तक बताया ये तो सब हमें पता है। जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड बात है वो हम अभी चर्चा करेंगे। जनरली कोई भी महापुरुष या लीडर्स लोग जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, इस नियम में इसका उल्टा है। ये कहता है यथायोग्य बरतना चाहिए। यथायोग्य का अर्थ मत होता है आज वर्थी, अकॉर्डिंग विद प्रायोरिटी और इक्विटी। आपकी जो व्यवहार है वो इनसाइड अंदर के लेवल पर तो प्रेम रहेगा, पर जब आप ऊपर ट्रीट करें तो वो यथायोग्य होना चाहिए, न कि इक्वल होना चाहिए। ये जो इक्वालिटी है, ये प्रैक्टिस में इक्वालिटी बड़ा डेंजरस थिंग होता है। यही है मिसअंडरस्टूड या कॉम्प्लिकेटेड चीज समझने की जरूरत है। मान लीजिए किसी कॉरपोरेट में या ऑफिस में बस इक्वल ट्रीटमेंट करना शुरू कर दे, यकीन मानिए 5-10 साल के बाद उस कंपनी में काम करने वाला कोई मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा, जितने लेजी और जितने निकम्मे लोग वही मिलेंगे, कोई समझदार काम करने वाला आदमी नहीं मिलने वाला। तो इक्वालिटी और जो फेयर बिहेवियर में अंतर होता है। इक्वालिटी बेस्ड ऑन योर इंटेंशन, जिसको आप प्यार कहते हैं, पर जब प्रैक्टिस में आप लाते हैं, हमारा व्यवहार फेयर होना चाहिए न कि इक्वल होना चाहिए। From the perspective of the essence of our human nature, all should be treated equally from our bottom of our heart. पर everyone knows, ये simple चीज है कि आप अगर आपको दूसरों की rude behavior अच्छा नहीं लगता, दूसरों को भी नहीं लगेगा। ये हम सबके साथ, including पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के साथ भी हमारा व्यवहार वैसा होना चाहिए। बट वी शुड कैन नॉट ट्रीट एवरीवन इक्वली। और इक्वली ट्रीट करने का क्या नुकसान है, अभी आप अपने घर में देख सकते हैं। मां बाप के दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, एक 20 साल का है, एक 8 साल का है, दोनों से आप बराबर प्यार करते हैं, पर क्या बराबर ट्रीट कर सकते हैं? दोनों की थाली में उतने ही रोटी रखेंगे 20 साल के लड़के की और 8 साल के लड़के की रोटी में थाली में? भाई, क्योंकि 20 साल का लड़का 3 रोटी खाता है तो 8 साल का भी 3 ही रोटी खाएगा। 20 साल के लड़के को आपने गाड़ी दे रखा है ड्राइव करने के लिए, 8 साल बच्चे को भी गाड़ी देंगे? जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं, थोड़ा एक बेटा या बेटी बहुत बड़ी है, बड़ा है, थोड़ा छोटा है, तो उन घर में बच्चा पूछता है छोटा कि उसके पास कंप्यूटर है, सेलफोन है, गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है? आप मुझे प्यार नहीं करते हो? आप उसको क्या समझाते हो? तुम्हें भी करते हैं, तुम जब उस एज के हो जाओगे तुम्हें भी देंगे। आप इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते। आप क्या ट्रीट करते हैं? यथायोग्य। पर प्यार इक्वल है। इक्वलिटी आपकी माइंड में होगी, व्यवहार में जिसको जितनी जरूरत है आप उतना करेंगे। ये पिक्चर देखिए, इक्वलिटी को जब आप प्रैक्टिस में लाते हैं क्या होता है, और जब आप फेयर डिसीजन लेते हैं, जस्टिस करते हैं, तो क्या होता है? एक मैच चल रहा है, तीन बच्चे हैं अपने, दीवार के उस तरफ मैच देखना है। आप अगर इक्वल ट्रीट करते हैं तो तीनों को खड़ा कर देंगे एक ही फ्लोर पर, जिसको जैसा देखना है देखो। या अगर आपको उनको ऊंचा कोई बॉक्स देना है, तीनों को बराबर बॉक्स देंगे, जिसको देखना है देखो। दूसरी तरीका है, जो लंबा है 6 फुट का है, उसको नीचे कोई सहारे की जरूरत नहीं। जो 2 फुट का 3 फुट का छोटा बच्चा है, आप इसको एक लंबा हाइट वाला बॉक्स देते हैं। आप तीनों के प्रति इक्वल फीलिंग रखते हैं, पर जब आप ट्रीट करते हैं तीनों को फेयरली करते हैं, जिसको जितनी जरूरत है, जिसकी जितनी योग्यता है, जो जितना वर्थ करता है, उसके हिसाब से आप ट्रीट करते हैं। सोसाइटी में भी यही होता है। आप किसी देश के प्रेसिडेंट को, किसी सोसाइटी के प्रोफेसर को, स्कूल के टीचर को, नेचुरली आप अलग अलग तरह से ट्रीट करेंगे, क्योंकि हर एक की अपनी वर्थ होता है। पर बॉटम लाइन क्या, कॉमन क्या होना चाहिए? सबके प्रति रेस्पेक्ट, सबके प्रति प्यार एक जैसा होना चाहिए। पर आपकी जब आप डिसीजन लेते हैं तो वो फेयर होना चाहिए, न कि इक्वल होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो स्वामी दयानंद जी का, क्योंकि वो बड़े विजनरी थे, जनरली हम टीवी से लेकर, मीडिया से लेकर, पॉलिटिक्स से लेकर, रिलीजियस फील्ड में यही जो आइडियल बात करते हैं, सबसे बराबर व्यवहार करो। स्वामी जी ऐसा नहीं कहते, बराबर नहीं, सबसे यथा योग्य व्यवहार करो, प्रीतिपूर्वक जरूर करो। खराब से खराब आदमी से भी प्रीतिपूर्वक करो, धर्म के अनुसार करो, पर यथा योग्य व्यवहार करना जरूरी है। सो ट्रीटिंग पीपुल इक्वली मीन्स दैट यू ट्रीट देम द सेम रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, सेक्स, सोशियल स्टेटस और एनीथिंग एल्स लाइक दैट। ट्रीटिंग पीपुल फेयरली मीन्स दैट यू ट्रीट देम इन वेज दे आर मोस्ट अप्रोप्रिएट टू देयर नीड्स। आपके पास 4 लोग हैं, हेल्प मांगने के लिए आए हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग है। ये गरीब है, खाने को पैसा नहीं है, घर नहीं है। आप इसको हेल्प करोगे दूसरे तरीके से, उसको जो जरूरत है। मान लीजिए गरीब आदमी को, क्योंकि आप किसी देश के या स्टेट के गवर्नर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, आपके पास बहुत पावर है, तो आपने गरीब आदमी, भूखा आदमी, पर बहुत टैलेंटेड है, बहुत गुणी है, उसको कोई नोट नहीं किया, राजा को पता चला कि ये व्यक्ति बहुत गुणी है, ज्ञानी है, उसको राजसभा में बुलाया, बोले ये बड़ा गुणी आदमी है, इसका हम सम्मान करेंगे। तो उन्होंने सारे पब्लिक में फूलों का हार पहनाया, सबके सामने प्रशंसा की, एक उपाधि भी दे दी, भारत रत्न पद्मश्री उपाधि दे दी। वो बेचारा बैठे बैठे सोच रहा था, राजा खुश हो गया है तो अगर 2-4 हजार रुपए दे दे तो मेरे काम चल जाए। पर दिया तो क्या दिया जी, भारत रत्न दिया, इसको मैं क्या करूंगा घर में लेके। उसको 5 हजार रुपए चाहिए, 10 हजार रुपए चाहिए, 20 हजार रुपए चाहिए, भारत रत्न का क्या करेगा? अभी भी जाकर भीख मांगेगा, भूखा सोएगा, भारत रत्न को बगल में रख के भूखा सोएगा। क्योंकि राजा सब ज्ञानियों को भारत रत्न देता है, उस गरीब को भी दिया। और एक गुणी है जिसके पास बहुत धन है, व्यापारी है, बहुत धन है, धनों की कमी नहीं, राजा उस पर भी खुश हुए, जिसके पास ऑलरेडी करोड़ों रुपए है उस पर खुश हुए, तो बोला इनको भी हमें अवार्ड देना है। मंत्री जी से पूछा क्या दे, मंत्री जी ने कहा देखिए पिछले बार वो एक गुणी आदमी आया था, आपने उसको खुशी हो खुश होकर के भारत रत्न अवार्ड दे दिया, वो दुखी होकर गया, बहुत रोया, परेशान हुआ, तो आप ये मत करिए, कुछ पैसे पैसे दे देना चाहिए। तो उसने उस करोड़पति धनी आदमी को 10 हजार रुपए की सहायता के रिवार्ड दिया, उसने बोला ये 10,000 लेकर मैं क्या करूंगा, मेरे घर के खिलौने तो 10,000 रुपए से ज्यादा आता है, ये क्या करूंगा। उसको भारत रत्न नहीं पद्मश्री भी दे देते, वो खुश होकर के जाता है। बात समझ में आती है, हर एक की जरूरतें अलग होती है, आप सबको इक्वली ट्रीट करते हैं अंदर से, पर जरूरत के हिसाब से नहीं करते, इसीलिए गड़बड़ियां होती है। व्यक्ति को उसकी योग्यता गुण, योग्यता काम, उसकी अचीवमेंट, उसकी नीड को देख करके जब हम उससे डील करते हैं तो वो सही मायने में हमारा सही व्यवहार होता है। इसीलिए कहा कि हमारे व्यवहार में फेयरनेस होना चाहिए, इक्वलिटी माइंड में होनी चाहिए। ट्रीटिंग एवरीवन द सेम इज द अपोजिट द ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली। ए पॉलिटिकल थ्योरी है, कम्युनिस्ट थ्योरी, बहुत लोग पढ़े होंगे, कम्युनिज्म पढ़े होंगे। आज जिनका स्लोगान होता है साम्यवाद, सबको बराबर लाएंगे। तो जिन जिन देशों में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स बने, एडमिनिस्ट्रेशन वाला क्या किया, सबको बराबर लाने का उपाय क्या है, जो धनी है उसकी सारे फैक्ट्री, उसकी जो ओनरशिप छीन लो, और जो गरीब है कुछ नहीं करता उसमें बांट दो, अब हो गया बराबर। 15-20 साल के बाद पता चला देश में धनी भी भूखा है, गरीब भी भूखा है, सब भूखे हैं। बहुत सारे देशों में 19 सेंचुरी की शुरुआत में कम्युनिज्म आया, क्यूबा, वियतनाम, यूरोप के बहुत सारे देशों में, रूस, चाइना, बहुत सारे देशों में, आपके ये मोस्ट ऑफ साउथ अमेरिकन देशों में कम्युनिज्म आया। 25-30 साल, 40 साल में वो सारे के सारे देश या तो कोलैप्स्ड हो गए फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, और अगर कोलैप्स नहीं हुए, कम्युनिज्म को सामने रख के पीछे पीछे कैपिटलिज्म, सोशल और बाकी चीजें चलाते रहे, जैसे चाइना वगैरह। साम्य, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड सेम, इज ए वेरी रॉन्ग थ्योरी। इवन यू कैन नॉट ट्रीट इट टू योर चिल्ड्रेन। सेमनेस माइंड में होना चाहिए, प्रैक्टिस में फेयरनेस होना चाहिए। ये फेयरनेस का दूसरा नाम होता है जस्टिस, न्याय। और जिस भी सोसाइटी में, जनरली जो कॉरपोरेट सेक्टर में जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, सीईओ जो वगैरह होते हैं, जब वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं, मोस्टली सेम, सबको सेम ट्रीटमेंट करना, इसके लिए एक नाम रखा गया इस तरह के ट्रीटमेंट को, लेजी मैनेजर सिंड्रोम। मतलब मोस्टली ऐसे मैनेजर जो लेजी होते हैं, जिन जो दूसरों की कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को, अचीवमेंट को जज करने के लिए कम बहुत जानने में, जिनमें एबिलिटी नहीं है या कर नहीं सकते, टाइम नहीं है, तो वो सबको सेम ट्रीट करते हैं। ऐसे मोस्टली इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कभी भी ग्रोथ नहीं करते। इसका सबसे बड़ा प्रमाण नमूना होता है कि गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग और कॉरपोरेट फील्ड में काम करने वाले लोग। कॉरपोरेट फील्ड में यथायोग्य व्यवहार होता है, गवर्नमेंट में समान व्यवहार होता है। इसलिए आप 50 साल तक ऑफिस में जाकर एक घंटे में एक कस्टमर से डील करो उतने ही तनख्वाह है, एक घंटे में 40 कस्टमर से डील करो उतने ही तनख्वाह है, सबको बराबर। और प्राइवेट सेक्टर में यह देखा जाता है कि कौन क्या, किस आदमी में कितनी एफिशिएंसी है, कितनी एबिलिटी है, उसके हिसाब से डिसीजन होता है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में कम होता है, क्योंकि इट्स ए फॉल्ट, ये जो सेमनेस की नेचर में एक फॉल्ट रहता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं व्यवहार में यथायोग्य होना चाहिए, और व्यवहार के पीछे जो आपका इंटेंशन हो वो प्रीतिपूर्वक होना चाहिए। दूसरा चीज कहा धर्म के अनुसार होना चाहिए। धर्म क्या है? हर व्यक्ति का अपना अपना जो इंडिविजुअल सोशल ड्यूटीज है वही धर्म है। मैं जब एज ए फादर मेरे धर्म दूसरे हैं बच्चों के प्रति, मैं जब ऑफिस में काम करता हूं मेरे धर्म दूसरे हैं मेरे ऑफिस के प्रति, मैं जब दुकान में किसी स्टोर में कस्टमर हूं तो कस्टमर के धर्म दूसरे हैं, अगर मैं वही व्यक्ति दूसरे स्टोर में सेल्समैन हूं तो मेरा धर्म बदल जाता है। धर्म मतलब ड्यूटीज, मुझे टाइम प्लेस और सिचुएशन के हिसाब से जो मेरी ड्यूटीज हैं जो मेरे करना चाहिए वो मेरे धर्म है। और हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार, धर्म का एक एग्जाम्पल लेती है, आप सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करेंगे, फेयरली ट्रीट करेंगे। धर्म का क्या एग्जाम्पल लेंगे? आप एक टीचर हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को जिस तरह ट्रीट करते हैं, जिस तरह के एक्सपेक्ट करते हैं, और आपका खुद का टीचर आता है तो क्या आप उसे अपने स्टूडेंट की तरह ट्रीट करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे। आपके टीचर को जब आपके सामने हो आप वहां स्टूडेंट हो जाए, इवन कितना भी पुराना हो आप कितने भी उसे बड़े बन गए हो, आपके गुरु के सामने आप झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, और आपका शिष्य आपसे कितना भी बड़ा बन गया हो वो आप उसको अपने उसी नजर से देखते हैं, शिष्य भाव से, प्रेम भाव से, बच्चों वाले भाव से देखते हैं। दोनों आपके सामने, आपके गुरु भी हैं आपके शिष्य भी हैं, आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स को आप रेस्पेक्ट करते हो, बच्चों को प्यार करते हो, ये आपका धर्म है। पेरेंट्स के प्रति एज ए चाइल्ड आपका धर्म क्या है, और आपके बच्चों के प्रति एज ए पेरेंट्स आपका धर्म क्या है, ये धर्म के अनुसार आप ट्रीट करते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटरवोवन है, जुड़े हुए हैं। हमारा हर व्यवहार, हमारा धर्म, हमारी और उस धर्म से जुड़ा होना चाहिए, अंदर एब्सोल्युटली यूनिवर्सल प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए, व्यवहार में वो फेयरनेस होना चाहिए। अगर संक्षेप में इसको समराइज करके बताया जाए कि जो पहला गाइडिंग नोट है हमारे व्यवहार में वो है हमारा इनर मोटिव। हमारा मोटिव क्या है, एटीट्यूड क्या है अंदर का, और वो प्यार से होना चाहिए सबके प्रति। जैसे वेद में मंत्र कहता है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगोप्सति। जो सब में अपने को देखता है या अपने में सब को देखता है वही रियली समझदार व्यक्ति होता है। अपने को सब में अपने को देखने का भाव क्या है कि अगर मुझे दर्द होता है कांटा चुभने से दूसरों को भी होता होगा तो दूसरों को कांटा ना चुभाया जाए, अगर ना खाने से मुझे भूख होता है तो दूसरों को भी भूख होता होगा, तो हमें किसी को भूखा अपनी मर्जी से नहीं रखना चाहिए। तो जो मुझे पसंद नहीं वो दूसरों को भी नहीं होता होगा, जो मुझे पसंद है दूसरों को भी होता होगा, उन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। इसी तरह अगर कोई भी मुझे प्यार से बात करता है मुझे अच्छा लगता है तो मैं भी दूसरों से प्यार से बात करूं तो उसको भी अच्छा लगता होगा। कोई मेरे से रूडली बिहेव करता है मुझे बुरा लगता है, डेफिनेटली दूसरों को भी बुरा लगता होगा, तो मैं दूसरों के साथ रूडली ना करूं, मेरे साथ कोई करता है तो करने दें पर मैं ना करूं, ये इनर मोटिव है। दूसरा है कि जब हम व्यवहार करें तो उसमें जो यथा योग्य है चूजिंग द मीन्स, मैं किस तरह के मीन्स क्या टूल्स यूज करता हूं उसमें डिफरेंस जरूर होगा। मैं छोटे बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करता हूं, बड़े बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करता हूं, उस व्यवहार के जो टूल्स है वो डिफरेंट होगा। और लास्ट है धर्म के अनुसार मेरा व्यवहार सोसाइटी में, फैमिली में क्या है, ये हमारे शास्त्रों के द्वारा निर्धारित है। मैं अगर पेरेंट्स हूं, पेरेंट्स का क्या कर्तव्य है वो मेरा धर्म है। मैं अगर बच्चा हूं, विद्यार्थी हूं, स्टूडेंट हूं, तो एक स्टूडेंट के रूप में मेरा क्या धर्म है वो मुझे फॉलो करना चाहिए। मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया सिखाया या कोई भी ज्ञान दिया उनके प्रति मैं रेस्पेक्टफुल बनूं, ये मेरा धर्म है। तो इन चीजों को, ये तीन चीजों को कंबाइंड करके जब हम व्यवहार में लाते हैं तो हमारा व्यवहार समाज में अनुकूल होता है। और एक चीज इंटरेस्टिंग होता है, ये सिर्फ मनुष्यों के प्रति नहीं, स्वामी जी लिखते हैं सबके प्रति, इंक्लूडिंग पशु पक्षी हैं उनके प्रति भी हमारा यही व्यवहार की जरूरत है। पशुओं में भी वही पेन है, वही प्लेजर है, वही फीलिंग है, वही इमोशंस हैं। उनको भी दर्द होता है, उनको भी खुशी होती है, उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी बुरा लगता है। उनकी बॉडी में भी वही सेंसेशन है, उनके माइंड में भी वही इमोशंस हैं, उनका भी हम ख्याल रखें। अगर हम अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को बुरी बात नहीं कह सकते, इंसानों को नहीं कर सकते, क्यों हम प्राणियों के साथ अत्याचार करें? तो प्राणियों के साथ भी वही प्रीतिपूर्वक यथा योग्य धर्मानुसार व्यवहार करें। इसी को वेद का ये मंत्र कहता है, प्रियम माकृणो देवेशु प्रियम राजसु माकृणो प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उतार्ये। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं राजाओं में, ज्ञानियों में, विद्वानों में, वैश्यों में, शूद्रों में, और जो भी, और भी जो भी रहे जिनका मैं क्लासिफाइड सोसाइटी के पार्ट नहीं है, उन सबके बीच में मैं प्रिय बनूं, मेरा प्रिय व्यवहार रहे, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य मुझे दो। देवियों सज्जनों, कंक्लूड करने से पहले, अभी हम कल दशहरा या विजयादशमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक दो सेंटेंस उसके बारे में कह के बात को समाप्त करेंगे। विजयादशमी नवरात्र 9 दिन तक बहुत सारे लोगों ने व्रत रखा होगा, उपवास रखे होंगे, बहुत सारे लोग रखते हैं, अलग अलग तरह से फेस्टिवल होता है। ये नवरात्र लोग जिस रूप में मनाते हैं वो अलग बात है, पर क्या इसका भाव, नवरात्रि तक लोग 9 दिन तक जिनेली भूखा रहते हैं, व्रत रखते हैं। उपवास का अर्थ होता है ईश्वर के समीप होना, उप मतलब क्लोज, वास मतलब बैठना। साल में कुछ ऐसा, कुछ दिन हम ऐसा चुनते हैं जिसमें हम अपने समय से बाहर निकलकर ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए कुछ समय निकालते हैं, अपने मेंटली हम उसे क्लोज होने की कोशिश करते हैं। केवल भूखा रह जाने से कोई उपवास या व्रत नहीं होता, भूखा नहीं भी रहेंगे तब भी होगा। भूखा रहना तो इसीलिए, उपवास तो इसीलिए कि इससे बॉडी की भी शुद्धि होती है, पर माइंड की शुद्धि होती है जब हम ईश्वर के एक्टिविटीज में लगे रहते हैं। मेडिटेशन करें, भक्ति करें, पूजा पाठ करें, अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहें, मन को कम खाएं, मन और शरीर को शुद्ध रखें। जब 9 दिन तक आप शुद्धि प्रक्रिया में होते हैं, फिजिकली मेंटली द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस में होते हैं, 10वां दिन कंक्लूड होता है। और उस त्यौहार का नाम क्या होता है? विजयादशमी। आजकल कम लोगों को पता होता है, अब तो दशहरा ज्यादा मनाते हैं, पर एक ही बात है। तो विजयादशमी का अर्थ क्या है? दशमी मतलब 10th, 10वां दिन, विजय मतलब विक्ट्री, द डे ऑफ विक्ट्री। किस चीज की विक्ट्री आपको? वो राम रामायण की कथा तो बाद में जुड़ी, इसका कोई दशहरा से कोई लेन देन नहीं है। आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल पाते, 9 दिन तक जो आपने साधना की, जो प्रैक्टिस की नवरात्र के दिनों में, आप अपने इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल करने की, बॉडी को, माइंड को रेगुलेट करने की, उसमें जो आपने विजय पाया, उस विजय को आप सेलिब्रेट करते हैं विजयादशमी के रूप में। तो विजयादशमी पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। आशा करते हैं आप अपने ऊपर विजय प्राप्त करते होंगे। जैन परंपरा में, जैन ट्रेडिशन में जो वीर शब्द है, वीर समझते हैं जो हीरो है, जो सोल्जर है, वो सैनिकों के लिए, वॉरियर के लिए यूज नहीं होता है। जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, साधु सन्यासी, उनके लिए, उनके जो सबसे बड़े तीर्थंकर है उनका नाम महावीर। अपने इंद्रियों को जितना, मन को कंट्रोल में रखना सबसे बड़ा हीरोइक काम होता है, और जो इसको अचीव करे वही महावीर होता है। तो विजयादशमी में आप भी महावीर बने या वीर बने, अपने इंद्रिय और मन को जितना नियंत्रण में रखें उतने आप वीरत्व को प्राप्त करेंगे। इसी भाव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।